मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और न ही ये घर मेरा है। आपने धोखे से मुझे यहाँ बुलाया है। बेहतर होगा कि आप मुझे वापस वहाँ पहुँचवा दें जहाँ से मुझे लाए हैं, क्योंकि अगर मिस्टर मल्होत्रा को इस बात की खबर हो गई कि आपने धोखे से मुझे यहाँ बुलाया है, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और मैं नहीं चाहती कि वो आपके साथ कोई बदतमीजी करें, क्योंकि आप बड़े हैं मुझसे। आरवी का गुस्सा देखकर अमर जी कुछ परेशान हो गए और उदास लहजे में बोले, बेटा, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? आपको नहीं पता कितना तड़पे हैं हम आपकी याद में। अगर आपकी हमसे कोई नाराजगी है तो बात कीजिए हमसे, हम आपकी सारी नाराजगी दूर करेंगे। आरवी व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, नाराजगी? नाराजगी उनसे होती है ठाकुर साहब जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता है, और मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, तो नाराजगी कैसी? कुछ नहीं लगते आप मेरे, आपसे कोई रिश्ता नहीं मेरा, तो बेहतर होगा कि आप जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी ना करें। पिता हैं हम आपके, और आप हमारी बेटी हैं। अमरजीत जी आरवी की बातों से आहत हुए थे, और ये शब्द तड़पते हुए उनके मुंह से नहीं दिल से निकले थे, जिसे सुनते ही आरवी के भाव गंभीर हो गए। नहीं, मैं नहीं मानती आपको अपना पिता, मैं आपको नहीं जानती, कोई रिश्ता नहीं मेरा आपसे, कोई रिश्ता नहीं। उसके ये शब्द अमरजीत जी के मन को भेद गए। उन्होंने आरवी की तरफ कदम बढ़ाते हुए भावुक होते हुए कहा, ऐसा मत कहिए बेटा। वो अभी इतना कह ही सके थे कि आरवी ने अपना हाथ आगे करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आगे मत आइएगा, और दोबारा मेरे लिए वो शब्द कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, और अब मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना। या तो आप मुझे वापस भिजवा दीजिए, या मैं खुद चली जाऊंगी। आरवी अपनी जिद पर अड़ी थी, और उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अपनी बेटी की नाराजगी और नफरत के आगे अमर जी बेबस महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ देर बाद अपनी भावनाओं को काबू करने के बाद उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आप यहाँ आई भी हमारी मर्जी से हैं, और जाएंगी भी हमारी ही मर्जी से। जब तक हम नहीं चाहते, आप यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए अपनी ये जिद छोड़िए और अंदर आइए, कुछ बातें करनी हैं हमें आपसे। अपनी बात कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गए। उनका पल में बदला लहजा देखकर आरवी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगी थी। जैसे ही उसने उनकी पूरी बात सुनी, एकदम से गुस्से में बोल उठी, आपने सुना नहीं, मैंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते, मैं खुद से यहाँ से चली जाऊँगी। आरवी ने अपनी बात कही, और जैसे ही जाने के लिए पलटी, एकाएक उसके सामने 7-8 काले कपड़े पहने पहलवान जैसे बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो गए। इसके साथ ही उसके कानों में अमरजीत जी की आवाज़ पड़ी, कोशिश बेकार है, आप यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक हम नहीं चाहते, तो अब अपनी जिद छोड़िए और अंदर आ जाइए। आरवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने घूर कर अपने सामने खड़े गार्ड्स को देखा, फिर दूसरी तरफ से जाने लगी, पर गार्ड्स फिर से उसके सामने आकर खड़े हो गए। आरवी ने कुछ देर तक कोशिश की, पर एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी, तो आखिर में हार मानते हुए वो गुस्से में दंदनाते हुए अंदर पहुंची। अमरजीत जी सोफे पर पूरे रौब के साथ बैठे शायद उसका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आरवी को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमें पता था आप जरूर आएंगी, आइए बैठिए। आरवी पहले ही गुस्से में थी, अब और ज्यादा चिढ़ गई और हल्की तेज आवाज में बोली, मुझे नहीं बैठना यहाँ, मुझे बस अपने घर जाना है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ, और ऐसे जबरदस्ती मुझे यहाँ रोकने का क्या मतलब हुआ? पिता हैं हम आपके, सालों बाद अपनी बेटी के बारे में पता चला, मिलने की बात करने की इच्छा हुई तो आपको यहाँ बुलवा लिया। इससे ज्यादा और कोई गलत इरादा नहीं है हमारा आपको यहाँ बुलाने के पीछे। रही बात आपको रोकने की, तो हम अपनी बेटी से कुछ बातें करना चाहते हैं, क्या इतनी वजह काफी नहीं है आपके लिए? अमर जी अब कुछ सॉफ्ट पड़ने लगे थे, पर आरवी अब भी बेहद गुस्से में थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए गुस्से से भरे स्वर में कहा, नहीं काफी है ये वजह मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको अपना पिता नहीं मानती। सिर्फ जन्म दे देने से कोई पिता नहीं बन जाता ठाकुर साहब, उसके लिए पिता होने की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। आप खुद को मेरा पिता कहते हैं, तो बताइए मुझे कि मेरे ये पिता इतने सालों से कहाँ थे? पिता कहते हैं आप खुद को, पर आप इंसान तक कहलाने के काबिल नहीं हैं। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से पहले मेरी माँ की और अब मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। सालों पहले आपके गुनाहों की सजा मेरी माँ ने भुगती और अब मैं भुगत रही हूँ। आप कातिल हैं मेरी माँ के, मेरी माँ खुद से नहीं मरी थी, आपके धोखे ने उन्हें मार दिया। कातिल हैं आप मेरी खुशियों के, आपकी वजह से वो मुझसे इतनी नफरत करने लगे, आपने सब कुछ बर्बाद कर लिया। और मेरी बेबसी देखिए कि मैं चाहकर भी आपसे नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपके 100 गुनाहों के बाद भी मैं ये सच नहीं झुठला सकती कि मेरी रगों में आपका खून बहता है, जिसकी कीमत मैं अपनी खुशियों को इज्जत को कुर्बान करके चुकाने वाली हूँ। आरवी का लहजा दर्द से सना था। एक बार फिर शान ने जो उसके साथ किया वो सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बेबसी और दर्द नमी बनकर आंखों में उतर आई। गला चोक हो गया तो वो कहते कहते चुप हो गई। अमर जी उसका दर्द समझ रहे थे, और अब कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी और गुस्से की वजह भी समझ आ गई थी उन्हें।
उस दिन पार्टी में जो हुआ और जो भी शान ने कहा वो सब उनकी आंखों के सामने घूमने लगा था। उनके चेहरे पर भी दर्द और बेबसी के भाव उभर आए। आरवी की आंसुओं से भरी आंखें देखकर उनका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, बेटा हमें एक मौका दीजिए अपनी बात कहने का। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है, हमारी बात सुनिए। आरवी के कानों में उनके शब्द पड़े तो उसने अपने आंसुओं को पी लिया और बेहद गुस्से में गर्जी, बेटा मत कहिए मुझे, बेटा नहीं हूं मैं आपकी और ना ही मेरे करीब आने की कोशिश कीजिए। अमर जी के कदम जहां थे वहीं ठिठक गए। उन्होंने बेबसी से कहा, हमारी बात तो सुनिए। वो आगे कुछ कहते उससे पहले तो आरवी ने उनकी बात काटते हुए रोष भरे स्वर में कहा, क्यों सुनूं मैं आपकी बात, जब मुझे आपकी किसी बात पर भरोसा ही नहीं तो क्या कहेंगे आप? सफाई देंगे अपने गुनाहों की, पर मुझे आपकी किसी झूठी कहानी को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। आप मुझे अपनी झूठी बातों में फंसाकर मुझे अपने तरफ करना चाहते हैं ताकि मैं मिस्टर मल्होत्रा के खिलाफ जाकर आपका साथ दूं। तो सुन लीजिए कि आपका ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा। मुझे नहीं पता कि वो क्यों आपसे इस कदर नफरत करते हैं, आपने क्या किया है ये भी नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि अगर वो आपसे नफरत करते हैं मतलब आपने कुछ बहुत बुरा किया है उनसे साथ। उनकी आंखों में मैंने जो दर्द देखा वो झूठा नहीं है, आपके लिए उनकी नफरत कोई छल नहीं। अगर आज वो आपसे इस कदर नफरत करते हैं तो जरूर आपने कुछ बहुत बड़ा गुनाह किया है, और अब आप चाहते हैं कि मैं उन पर विश्वास ना करके आप पर विश्वास करूं, तो ऐसा मेरे जीते जी तो मुमकिन नहीं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात सुनूं और उस पर भरोसा करूं, तो किया था ना मेरी माँ ने आप पर विश्वास, पत्नी थी ना आपकी, अपना सब कुछ आपको सौंप चुकी थी, पर आपने उनके विश्वास के बदले उन्हें क्या दिया? धोखा, धोखा दिया आपने उन्हें।
आपकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, आपके वजह से आज मेरे पति मुझसे इस कदर नफरत करते हैं कि मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। जिस पति ने शादी के इतने महीनों बाद भी कभी मेरी तरफ बुरी नज़र से नहीं देखा, मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ तक नहीं, मुझे इज्जत दी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से उन्होंने भरी महफिल में मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया। और आप चाहते हैं कि मैं बात सुनूं आपकी? नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात, और ना ही यहाँ रुकना है, इसलिए तो मुझे जाने दीजिए या मैं उन्हें फ़ोन करके बुला लूँगी। उसके बाद वो आपके साथ जो करेंगे उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे।